आज के इस पहले दिन में आप सबका फिर से पुनः स्वागत है। दूसरे सत्र में आप सभी यहाँ पहुंचे हैं। अभी हम अगला सेशन शुरू करने जा रहे हैं। अभी आपके लिए जो सेशन है इसका विषय है डेवलपिंग लीडरशिप एटीट्यूड। और ये सेशन लेकर के हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे परम आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सरोज दीदी जी, जिनसे आप परिचित हैं। शायद मेरे शब्दों से भी ज्यादा आप उनसे पहले से ही परिचित हैं। कल से और बहुत पहले से हम उनसे मुलाकात करते आ रहे हैं, मिलते आ रहे हैं, उनके प्रवचनों से हम ये लाभ लेते जा रहे हैं। फिर भी मैं कुछ शब्दों में उनका फिर से थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। हमारे दीदी जी वसंत कुंज दिल्ली द्वारका ब्रह्मा कुमारी सेंटर के डायरेक्टर हैं। पिछले 46 वर्षों से ये अपनी सेवाएं इस ब्रह्मा कुमारी सेंटर में और आप जैसी अनेक आत्माओं को देते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इफ्को का जो ये मैं कहूंगी एक कंपनी जो है, आप सभी जानते हैं, इसको एक परिवार का जो रूप दिया है वो बिल्कुल पूरी तरह से दीदी का ही सहयोग है, जो हम पिछले 20-22 वर्षों से लेते आ रहे हैं। एक कंपनी को आज एक परिवार के रूप में आज सभी हम यहां मिलकर के बैठे हैं, तो ये सिर्फ दीदी के ही सहयोग से संभव हो पाया है। और इसके अलावा आप जानते हैं कि दीदी बहुत सारी कंपनीज में जाकर के अनेक आत्माओं को मेडिटेशन क्लासेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम देते आ रहे हैं। ज्यादा कुछ ना कहते हुए उनके विषय में सिर्फ दो लाइनें कहना चाहूंगी कि वसुधा के नेता कौन हुए, भूखंड प्रनेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया बल्कि विघ्नों में भी काम किया। तो ऐसे ही नेतृत्व और व्यक्तित्व की पर्सनैलिटी हमारे दीदी जी आज का विषय लेकर के आए हैं, जिसका टॉपिक लीडरशिप है। लीडरशिप, लीडर तो हर कोई बन जाता है दुनिया के अंदर, जो कि हमें बाहर हम किसी से अगर कोर्स करें कुछ सीखें तो हर कोई लीडर बनना चाहता है। लेकिन ऐसा लीडर किस काम का जो लोगों को अपने साथ जोड़ ना सके, ऐसा लीडर किस काम का जिसकी प्रेजेंस में लोग सिर्फ उससे डरकर काम करना चाहें, ऐसा लीडर किस काम का जो सिर्फ अपने भय से अपनी उपस्थिति से लोगों से सिर्फ काम करा सके लेकिन एक संबंध एक आत्मिकता और अंदर गुणों का विकास हम ना करवा सके। तो वही सब वैल्यूज हमारे जीवन में कैसे आए, कैसे हम अपने आप को और निखार सके, ना सिर्फ डर से लोगों से प्यार से हम वो काम कैसे करा सके, खुद को हम कैसे समझ सके, आज का विषय कुछ ऐसा ही है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि दीदी जी अब ये सेशन हम सबके बीच में रखें। आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। आप सभी से, अपनों से अपनों की मुलाकात। बहुत पुराना एसोसिएशन है इफ्को के साथ और अपने संस्थान की तरफ से मैं जहां कहीं जाती हूं ऑल ओवर इंडिया में इफ्को के जहां बोर्ड्स दिखाई देते हैं ऐसा लगता है कि हम अपने परिवार में आ गए हैं। आप सबको भी लगता है, एक बहुत क्लोज एसोसिएशन है हमारा। इसलिए कभी ये कहते हैं हम आपका परिचय देंगे तो मैं कहती हूँ आप अपने मन के भाव 2-3 शब्दों में व्यक्त करो, मैं हम सब पहले परिचित हैं। ठीक बात है। बाकी आज का जो विषय हमें कहा गया है लीडरशिप एटीट्यूड एंड बिहेवियर, आप सभी जानते हैं कि पिछले कई वर्षों में मैनेजमेंट में या प्रबंधन में बहुत तीव्र गति से परिवर्तन हुए हैं और पहले अमेरिकन सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट था, फिर जैपनीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट हुआ, उसके बाद अब जो है HRD की डिमांड है हाउ टू विन द कमिटमेंट, हाउ टू विन द रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स। और उसके लिए जब तक हम, क्योंकि अमेरिकन सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट क्या था, कम विद योर हैंड्स वी शैल गिव आवर हेड्स टू यू, जैपनीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट कम विद योर हैंड्स बट वी नीड योर हेड्स ऑल्सो, दिस वॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ हैंड्स एंड हेड। और जो अब है ब्रह्मा कुमारी इसमें आपका एसोसिएशन हुआ है, इसमें है कॉम्बिनेशन ऑफ 3 H, हैंड्स हेड एंड हार्ट। जब तक हम सभी मिलकर के दिल से एक नहीं होंगे, मेरे को हमारे ज्ञान सरोवरवासी कमेंट्स दे रहे थे, क्योंकि हमारी मीटिंग चल रही थी, सब ऑल ओवर वर्ल्ड की बहनें इकट्ठी होती हैं, कुछ सीनियर्स लोग नीचे, तो मैं भी आप लोगों के साथ कल ही आई हूं दिन में, तो कह रहे थे दीदी आप बड़े निश्चिंत रहते हो। मैंने कहा हमारी टीम इतनी अच्छी काम कर रही है, अब उसके बाद मेरे को क्या चिंता की जरूरत है। तो हम समझते हैं कि अपने जैसे इस तरीके से भाई बहनें तैयार हो जाएं जो हमारी अनुपस्थिति में भी कार्य सुचारू रूप से चला सके, और वही टीम स्पिरिट की भावना रखते हुए हम ये चाहते हैं कि जब तक हम सब दिल से एक नहीं हो जाएंगे तब तक टीम काम नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए पिछले सालों से जो मैनेजमेंट में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई है, क्योंकि अभी तक हम मैनेजर्स शब्द यूज करते थे लेकिन अब हर संस्था में लीडर्स की जरूरत है, तो ये जो परिवर्तन है इस सेशन में हम क्या क्या बातें कवर करेंगे, द रोल, द चेंजिंग रोल ऑफ अ मैनेजर, इसका क्या है एम। इन दिस सेशन वी विल फोकस ऑन व्हाट, ऑन व्हाई द ओल्ड मेथड्स ऑफ मैनेजिंग पीपल आर नो लॉन्गर सुटेबल, क्लैरिफाई व्हाट चेंजेस इन मैनेजमेंट स्टाइल आर रिक्वायर्ड, आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज एंड एटीट्यूड्स ऑफ एन इफेक्टिव मैनेजर, और इसके अलावा आइडेंटिफाई द पर्सनल एबिलिटीज एंड पावर्स नीडेड टू अडॉप्ट दिस न्यू स्टाइल ऑफ मैनेजिंग पीपल। अब इसकी जरूरत क्या है, व्हाट आर द न्यू ट्रेड्स ऑफ मैनेजमेंट, न्यू ट्रेड्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के नए ट्रेड्स क्या हैं, इसमें विशेष ये बात समझने की है, जानने की है कि पहले क्या होता था। पहले ये होता था मैनेजमेंट में कि अ पर्सन शुड बी मल्टी स्किल्ड, थैंक यू, पर्सन शुड बी मल्टी स्किल्ड, बट नाउ द ट्रेंड इज स्किल्स आर ओके, आपके अंदर स्किल्स हैं लेकिन देयर शुड बी जनरल प्रैक्टिस। पहले हम इंस्टेंट कर कोई भी कार्य करना चाहते थे, लेकिन आज जो कंसेप्ट है वो कॉन्स्टेंट, देयर शुड बी कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। पहले हम यूज करते थे हैंडलिंग फैक्टर, भाई इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन आज कहते हैं हु आर यू टू हैंडल मी, आप कौन होते हैं मुझे हैंडल करने वाले, देयर शुड बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक बात है, बच्चों को भी आप हैंडल नहीं कर सकते। पहले एफिशिएंसी लेवल देखा जाता था, लेकिन आज इफेक्टिवनेस कितनी है। पहले आप कहते थे भाई ये पर्सन इज कैपेबल एनफ, ये बहुत कैपेबल है, आज कहते हैं कैपेबल ठीक है बट ये बताओ कि एडवर्स सिचुएशंस में ये इसमें कोपिंग एबिलिटी कहां तक आई है। लीडर्स को तो प्रेशर चारों तरफ से आते हैं, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस की बात होती थी, पहले भाई इनका एक्सपीरियंस कितना है, आज कहते हैं आप एक्सपीरियंस छोड़ दो भाई, आप ये बताइए कि आपका एक्सपोजर कहां कहां हुआ है, राइट, मोर एंड मोर एक्सपोजर, चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। पहले कहते थे मोटिवेशन, क्योंकि इफको भी एक इतनी बड़ी संस्था है, मैंने हर प्लांट में विजिट किया पर्सनली, प्रोग्राम भी दिए हैं इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम, मैंने देखा सब प्रकार की सुविधाएं आप लोगों को उपलब्ध हैं, सीबीएसई सिलेबस वगैरह हर जगह, केंद्रीय विद्यालय हैं, हॉस्पिटल्स हैं, आप लोगों को ऑफिसर ग्रेड बनने मिलने के बाद हर तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं, लेकिन कहीं मैंने पढ़ा था वेयर डज द स्माइल बिगिन, थोड़ा इंसेंटिव मिला फिर आप खुश हुए, फिर उसके बाद यू रिवर्ट बैक टू द ओल्ड बिहेवियर एज यू वर इन द पास्ट, लेकिन ये जो शुरुआत होती है वो है सेल्फ मोटिवेशन से। ऐसा नहीं है कि कोई आपको मोटिवेट करे, सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। फिर क्वालिटी सर्कल्स की बात की जाती रही, अभी है क्वालिटी कॉन्शियसनेस, आपकी कॉन्शियसनेस में ही क्वालिटी आ जाए। उसके बाद वर्चुअल रियलिटी, अब क्या है वर्चुअस रियलिटी। पहले हाई टेक की बात करते थे, हाई टेक का मतलब भाई टेक्नोलॉजी वाइज आप बहुत साउंड हैं। क्या हो गया भाई, हम ये कहते थे कि टेक्नोलॉजी वाइज आप बहुत साउंड हैं, लेकिन आज जो बात की जाती है वो हाई टच। एकता यहां से, सारिका यहां से मिस हुआ है। तो अभी जो है हाई टेक की बात नहीं होती, अभी किसकी बात होती है हाई टच। जैसे आप ब्रह्मा कुमारी के पास भी क्यों आते हैं, देखा जाए तो ब्रह्मा कुमारी के पास आने का भी मुख्य कारण ये है कि भाई यहां स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है और स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में हमें टचिंग मिलेगी, अच्छी अच्छी जो चार्ज्ड लोग हैं वो उनसे उनके कॉन्टेक्ट में हम आएंगे, हमें इंस्पिरेशंस मिलेंगी, हम इनसे स्पिरिचुअल इनपुट मिलेगा, स्पिरिचुअल इंसाइट्स मिलेंगी, इसलिए ये सारा बताया जाता है। तो इसलिए ये जो आपको बातें बताई हैं, पहले आईक्यू की बात करते थे, फिर थोड़े समय के बाद ईक्यू की बात हुई, फिर थोड़े समय के बाद एमक्यू की बात आई, इंटेलिजेंट कोशेंट, इमोशनल कोशेंट, फिर मॉरल कोशेंट, लेकिन आज है एसक्यू स्पिरिचुअल कोशेंट। क्योंकि जब तक आप स्पिरिचुअली अपने को चार्ज नहीं कर लेते हैं तब तक आप एथिक्स में भी आगे नहीं जा सकते। हर एक को मालूम है कि आपस में एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, आपस में एक दूसरे से प्यार होना चाहिए, है ना? लेकिन फिर ये बात आती है कि वन साइडेड थोड़ी होगा, उनमें भी तो होना चाहिए। पर स्पिरिचुअल टीचिंग आपको ये सिखाएगी कि मुझे किसी को नहीं देखना है, मुझे सेल्फ को देखना है। हम हरेक को एक ही बात बताते हैं, वो सिस्टर आ रही है देखने के लिए, कोई बात नहीं, मैं आपको जबानी सुनाती रहूंगी, आप चिंता ना करें, ठीक है? तो लीडर की जो क्वालिटी है वो क्या होनी चाहिए, लीडर की पहली क्वालिटी क्या है आप बता सकते हैं? क्या होना चाहिए? आध्यात्मिक होना चाहिए। पर देखा जाता है कि सारे लीडर आध्यात्मिक तो नहीं होते, है ना? इफ्को की संस्था ने तो, आ रही हैं सिस्टर, आ जाएंगी, इफ्को की संस्था ने तो आध्यात्मिक संस्थाओं में आपको भेजना शुरू किया है ना? लेकिन सभी सभी लोग तो आध्यात्मिकता की तरफ नहीं रुझान देते हैं, क्या करेंगे लीडर? जैसे आप देखिए, मैं चलो आपसे ये जानना चाहती हूं कि लीडर और मैनेजर में आप क्या अंतर महसूस करते हैं? क्या कहेंगे? मैनेजर बदलाव नहीं चाहता, लीडर बदलाव चाहता है। और बताइए। कोऑपरेशन नहीं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, दोनों में अंतर क्या है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ी बात जो कहते हैं ना, लीडर इज वन हु कैन बी द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल, लीडर इज वन हु कैन मोटिवेट अदर्स, हु कैन गाइड अदर्स, हु कैन ओपन ए वे फॉर अदर्स टू फॉलो। लीडर इज वन हु लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, नॉट फ्रॉम बिहाइंड। मैनेजर में ना पुशिंग फैक्टर होता है, लीडर में पुलिंग फैक्टर होगा, वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, उसके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण होगा, जहां वो खड़ा होगा ना लोग अपने आप उसकी तरफ आ जाएंगे, वैल्यूज के बेसिस पे ही तो आएंगे ना। तो हम आपको एक बार थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे, लीडर इज वन हु विल हैव दिस फाइव सीज। मैं लिखूं या आप लोग सुन लेंगे? ऐसे ही सुन लेंगे। पहला है काम स्टेट ऑफ माइंड, काम स्टेट ऑफ माइंड। दूसरा क्लियर फोकस। तीसरा कॉन्फिडेंट। चौथा कमिटेड। और पांचवा क्रिएटिव, ये पांच सेज का कॉम्बिनेशन उसमें होगा। पहला काम स्टेट ऑफ माइंड, लीडर की सबसे बड़ी विशेषता है वो मन से बिल्कुल शांत होगा, बिल्कुल शांत है ना। अगर वो मन से शांत नहीं है तो वो राइट डिसीजंस नहीं ले पाएगा। आप सबकी सुने, सबकी सुने, लेकिन मन से शांत रहे, तभी आप किसी निश्चित बात पे पहुंचेंगे कि मुझे अब किस तरफ अपने डिसीजंस को डायरेक्ट करना है। इसकी जरूरत है या नहीं है? जब हम मन से शांत हैं तभी हमारा फोकस क्लियर होगा। फोकस में हम तीन बातें कहते हैं, पर्पस, वैल्यूज, विजन। पर्पस, वैल्यूज, विजन। पर्पस का मतलब क्या है कि why I have been associated to the organization for so long, मैं इतनी देर से संस्था में क्यों काम कर रही हूं, क्यों, किस लिए जुड़ी हूं, मेरा आखिर भी लक्ष्य क्या है। क्योंकि लोगों के काम करने का लक्ष्य अलग अलग होता है। कई कहते हैं कि मुझे by hook and by crook I have to earn money, ठीक है। दूसरा कहता है कि मनी, चलो ये तो इट्स हार्डली मैटर, वो तो थोड़ा बहुत सब कुछ चाहिए लाइवलीहुड के लिए, बट मेरा जो पोटेंशियल है ना, मैं उसको बेस्ट यूटिलाइज कर पाऊं, इसलिए मैं इस संस्था में काम कर रहा हूं, मैं कुछ लोगों को दे सकूं, मैं कुछ समाज को दे सकूं। दोनों के उसमें अंतर है। हम ये कहते हैं कि पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, पैसा कमाना राइट है, तो ये आपका पर्पस है, लेकिन इसके साथ वैल्यूज को अगर आप जोड़ देते हैं, एक होता है कि जिसको आप ये कह रहे हैं कि बाय हुक एंड बाय क्रूक आई हैव टू अर्न मनी, एक होता है विद सम सेट ऑफ वैल्यूज आई हैव टू अर्न मनी, मेरी ये वैल्यूज रहेंगी, धन तो मुझे लेना ही है लेकिन इन वैल्यूज के साथ। तो पर्पस, वैल्यूज, फिर आपका विजन क्या है, इन वैल्यूज का सहारा लेके आप चलते हैं तो जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो उस समय क्या आपका क्या विजन है फर्दर, राइट। जब ये तीनों बातें स्पष्ट हैं इसका मतलब आपका फोकस क्लियर है, ये तो फोकस क्लियर नहीं कहेंगे। एकता को बुलाओ, उसको सेशन निकाल के देगी, ठीक है ना। तो इसलिए जो अब आप आपको बता रहे थे, तीसरा, अगर हमारा पहला काम स्टेट ऑफ माइंड, दूसरा क्लियर फोकस, तीसरा कॉन्फिडेंट, जब आपका फोकस क्लियर होगा ना तो आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपको आत्मविश्वास होगा, आप कोई भी बात विश्वास के साथ करेंगे। और जो व्यक्ति कॉन्फिडेंट होगा वही कमिटेड होगा। आज हमारे में प्रतिबद्धता क्यों नहीं है, वचनबद्धता क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है। कई बार कई लोग कहते हैं कि हम इतने बजे यहां पहुंच जाएंगे, लेकिन जब देखते हैं कि जब वो नहीं पहुंच पाते, इसका मतलब वो अपने प्रति जो है वो एकता को निकालेगी। इसीलिए उसके बाद जो कॉन्फिडेंट है वही कमिटेड होगा। और आप सोचिए, जब आप कमिटेड हैं लोगों के बीच में तो आपको क्रिएटिव बनना ही पड़ेगा। आप हमेशा एक मुद्दा लेके तो नहीं आओगे, आप कुछ क्रिएटिव बन के तो लोगों के बीच में आएंगे, तभी तो उनकी एक्सेप्टेंस होगी। तो ये पांच बातें हैं, काम स्टेट ऑफ माइंड, क्लियर फोकस, कॉन्फिडेंट, कमिटेड, क्रिएटिव। लेकिन अगर ये फाइव सीज मेरे अंदर हैं, तो इसका कोई मापदंड है, इसका कोई पैरामीटर है, कैसे पता चले फाइव सीज हमारे अंदर हैं? बताइए। आप सब में है ये फाइव सीज, नहीं है, ये कह रहे नहीं है। अपने आप को देखना है, इसका जो मापदंड है वो है कंटेंटमेंट। ही वुड बी कंटेंटेड। तभी किसी ने बहुत अच्छा कहा, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। सबसे बड़ा जो धन है वो है संतोष धन। ये राइट बात है ना? और संतोष धन आता है, आज हम भगवान के महावाक्य सुन रहे थे, मैं आपको शेयर करना चाहती हूं, अगर हम वो अपने जीवन में उतार लें तो हम फरिश्ते बन जाएं। उसमें बड़ी अच्छी बात थी कि तुम लोग इतनी सेवा कर रहे हो, दिन रात सेवा में तत्पर हो, लेकिन फिर भी कई बच्चों को सेवा का फल नहीं मिलता है। क्या कारण है? बाबा ने पूछा। बाबा मतलब परमात्मा। सेवा का फल तो खुशी होनी चाहिए। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि कारण क्या है कि कई अल्पकाल की प्राप्ति चाहते हैं तो उन्हें अल्पकाल का ही फल मिलता है। अल्पकाल की प्राप्ति का मतलब नेम एंड फेम। ये बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ये बड़े क्रिएटिव हैं, ये बड़े गुणी व्यक्ति हैं, 10 लोगों ने आपको सराहा और यही आपकी इच्छा थी, आपको लोगों से फीडबैक मिल गई और आप अल्पकाल के लिए खुश हो गए। और अगर ये हमेशा आपको सुनने की आदत पड़ गई नेम एंड फेम की, तो जिस दिन किसी दिन आपको नेम एंड फेम नहीं मिला तो क्या होगा? क्या होगा? आपके मुख से निकलेगा कि ओहो ये जिंदगी है, क्या फायदा, जिंदगी हमने सेवा में लगा दी तब भी मिला क्या हमको, है ना? है ना, ऐसा होता ना? तो बाबा ने बताया, बच्चे नेम एंड फेम अल्पकाल की प्राप्ति है, तुम्हें अल्पकाल की प्राप्ति चाहिए या चिरकालीन चाहिए? अगर चिरकालीन प्राप्ति चाहिए तो इन बातों से बाहर आ जाओ, जिसमें भगवान ने गीता में महावाक्य उच्चारण किए, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। एसेंस तो सभी के पास है, ये बात क्या हमारे लिए है? ऑफिस में इस बात की जरूरत नहीं है? जरूरत है कि नहीं है? थैंक यू। तो इसलिए जो ये बात आपको बता रहे थे, मेन पॉइंट चल रही थी, किस बात पे चल रही थी बात? एक तो मैं नाप इधर ही रहो, इसमें चला जाता है, कंटेंटमेंट। किसी ने बहुत अच्छी बात कही, मतलब कंटेंटेड बैगर इज अ किंग बट ग्रीडी किंग इज अ बैगर। इफ यू आर अ किंग बट यू आर ग्रीडी, यू आर अ बैगर। ऑन द अदर हैंड बैगर मतलब नथिंग बिलोंग्स टू हिम, उसके पास कुछ भी नहीं है, बट ऑन द अदर हैंड ही इज कंटेंटेड, ही इज लाइक अ किंग। तो सबसे बड़ा खजाना कौन सा हुआ? संतोष का खजाना। और जिसके पास ये है वही तो लीडर है, नहीं वो तो फिर इन चीजों के पीछे ही भागता रहेगा, वो लोगों को क्या नेतृत्व करेगा? फॉल्स सेटिस्फेक्शन में तो नहीं रहना है। कंटेंटमेंट का मतलब फॉल्स सेटिस्फेक्शन नहीं, मेरे पास कुछ है नहीं और मैं कहूं आई एम कंटेंटेड, ऐसा नहीं है। लेकिन आप सब कुछ करके भी अगर आपको कुछ नहीं प्राप्ति हुई है बाहर से नेम एंड फेम की, तभी भी आप निश्चिंत रहें। इस बात की खुशी है कि मेरे हाथ से कुछ ईश्वर ने अच्छा करवा दिया, ठीक है? तो ये थोड़ा सा बीच में स्लाइड्स मिस हो गई थी कि पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर इफेक्टिव लीडरशिप, कि लीडर जो है उसका एटीट्यूड पॉजिटिव होना कितना जरूरी है जो इफेक्टिव लीडरशिप के लिए। बताया कि यू मे नॉट बी एबल टू चेंज द पास्ट, द ट्रैफिक, द वेदर, मार्केट फोर्सेस, व्हाट अदर्स डू, द बॉसेस एटीट्यूड, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट अदर पीपल विल से, इवन यू मे नॉट बी एबल टू चेंज द डेस्टिनी, बट यू कैन डू समथिंग, यू कैन चेंज योर एटीट्यूड टूवर्ड्स देम। आपको अपने को, अपने एटीट्यूड को बदलना है। कैसे? अब हम इसमें बड़ी अच्छी बात बताई है, मैनेजमेंट में दो टर्म्स आती हैं, सर्कल ऑफ कंसर्न, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न क्या है? जो मेरे कंट्रोल में है, राइट? और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो मेरे कंट्रोल से बाहर है। अब जो मेरे कंट्रोल में है, हम उसको ठीक कर लें। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्कल ऑफ कंसर्न जो मेरे कंट्रोल में है। मेरे कंट्रोल में क्या है? माय वैल्यूज, माय विजन, माय बिलीफ, माय एटीट्यूड, माय अजम्पशंस। जब हम आपस में बैठते हैं तो हम सर्कल ऑफ कंसर्न के बारे में ज्यादा बात करते हैं। क्या? गवर्नमेंट पॉलिसीज, ग्लोबल कंपटीशन, इकोनॉमिक रिसेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, है ना भाई? आजकल पॉलिटिकल टर्मोइल बहुत ज्यादा है, हमारे देश के कर्णधार ऐसे हैं, हमारे देश का क्या होगा। अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी लोग भी बाहर बैठ के ना घंटों घंटे चर्चा करेंगे, फिर कहेंगे आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे, फिर थोड़ी देर जोर से हंसेंगे, फिर थोड़ा फिर चर्चा शुरू कर देंगे, फिर दो घंटे बाद कहेंगे चलो भाई छोड़ो, दुनिया चलती आई है, चलती रहेगी, फिर नेक्स्ट डे फिर चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। हम ये नहीं सोच पाते कि ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमें इन बातों की चर्चा ना करके अपने प्रीशियस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना? हमें तो ये सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं। तो अगर हम अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा लें तो उससे क्या होगा, सर्कल ऑफ कंसर्न का गैप रिड्यूस हो जाएगा। पहले हम लोग रिएक्टिव फोकस में रहते थे, लेकिन अभी हम प्रोएक्टिव हो जाएंगे। प्रोएक्टिव मतलब अपने में परिवर्तन लाएंगे, परिस्थिति को दोषी नहीं ठहराएंगे। पहले हम परिस्थिति को दोषी ठहराते थे, ये परिस्थिति ऐसी है, ये व्यक्ति ऐसे हैं, लेकिन कोई कैसा भी है मुझे क्या करना है। तो आप कभी रिएक्टिव नहीं होंगे, क्या होंगे? प्रोएक्टिव। और ऐसे व्यक्ति ही लीडर होते हैं, और ऐसे ही अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन से आसपास के एटमॉस्फेयर को भी चार्ज करते हैं। अब आपसे मैं जब पहले पूछ रही थी कि मैनेजर और लीडर में डिफरेंस क्या है, आप देखिए, मैनेजर का मतलब द मैनेजर इज वन हु एडमिनिस्टर्स एंड लीडर इनोवेट्स। मैनेजर मेंटेन्स, लीडर डेवलप्स। द मैनेजर रिलाइज ऑन सिस्टम्स, लीडर रिलाइज ऑन पीपल। मैनेजर काउंट्स ऑन कंट्रोल, लीडर काउंट्स ऑन ट्रस्ट। वो विश्वास पात्री है और वो नियंत्रण पात्री है। द मैनेजर डज द थिंग्स राइट एंड लीडर डज द राइट थिंग्स। ठीक है, मैनेजर को अगर आप कोई डायरेक्शन देते हैं, भाई आप इस सीढ़ी को लगा दें, वो सीढ़ी जाके लगा देगा, लेकिन लीडर चेक करेगा इज इट ऑन द राइट वॉल, कहीं ऐसा तो नहीं कि दीवार ही कमजोर है, है ना? लीडर कुछ क्रिएटिव होगा, वो अपने हिसाब से भी देखता है कि चीजें ठीक जा रही हैं या नहीं। वो केवल ये नहीं है कि जो उसे आदेश मिला उसे ही पालन किया। तो ये हमें देखना है, जैसे आप कभी भी शुरू में किसी ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं तो शुरू शुरू में आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका पास पास्ट एक्सपीरियंस है, आपकी क्वालिफिकेशन है, उस बेसिस पे वो आपको ले लेते हैं। लेकिन जब आप संस्था में काम करना शुरू करते हैं, कुछ समय तक काम करते हैं, उसके बाद भी क्या लोग आपको उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे पहचानेंगे या आपको कुछ और भी आपसे उनकी एक्सपेक्टेशंस होंगी? क्या कहेंगे? और भी होंगी। तो कुछ आप ऐसे एटीट्यूड्स या एक्टिविटीज के बारे में मेंशन कर सकते हैं सो दैट यू कैन प्ले योर रोल वेल इन द ऑर्गेनाइजेशन एज अ लीडर। कुछ बता सकते हैं, शेयर करेंगे? स्किल्स तो अभी आपको बताया कि हैं, आपके कैसे रिलेशंस हैं, क्योंकि हर एक का वे ऑफ वर्किंग, हर एक का एटीट्यूड, हर एक के अंदर कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, हर एक व्यक्ति में होती ही हैं। उस बेसिस से तो आपका व्यक्तित्व पहचान में आएगा ना, तो आप तो अपने व्यक्तित्व से पहचाने जाएंगे, और व्यक्तित्व बनता है आपके एटीट्यूड से, जो आपकी एक्टिविटीज से दिखाई देता है, राइट? तो कुछ हम एटीट्यूड्स के बारे में मेंशन करेंगे। मैं आपसे आप थोड़ा इसलिए मैं आपको कहती हूँ आप शेयर करें ताकि आपका भी चिंतन चले। हाँ बताएं। ईमानदारी के लिए, ये तो एक्टिविटीज की बात आ गई जो आप करोगे। हाँ और बताइए। पंक्चुअलिटी, टीम स्पिरिट, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट एक लीडर के लिए। कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को सही समय पे पूरा करना चाहता है तो उसे तो टीम की जरूरत है ना, है शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ओके, अगर आपके अंदर आप लोगों से एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, उसके लिए कौन से एटीट्यूड की जरूरत है? भाई आप मेरे से शेयर कर रहे हैं, मुझे अपने अंदर क्या एटीट्यूड रखना है अंदर में, है? सबसे बड़ा जो है, जो आप शायद सोच नहीं पा रहे, दैट इज लिसनिंग। मेरी आपसे सुनने की भावना ज्यादा होनी चाहिए, राइट? लिसनिंग एबिलिटी, बेसिक गुण। यू कांट डू एनीथिंग फर्दर, यू कांट पास एनी जजमेंट विदाउट लिसनिंग। कर सकते हो आप? कुछ भी नहीं कर सकते लिसनिंग के बिना। इट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड लीडर। अब आप सबसे कुछ सुन लेंगे तब तो आप उसके बाद कुछ अपना कह पाएंगे। आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो आप क्या डिसीजंस लेंगे? और लिसनिंग में क्या है कि लिसनिंग में आप सब क्या समझते हैं कि आप सब में लिसनिंग एबिलिटी है? कई कह रहे हैं। चलो आज हम थोड़ी सी एक्सरसाइज से अपने को टेस्ट कर लेते हैं। करें एक्सरसाइज? ठीक है। ऑन योर पीस ऑफ पेपर जो भी आपके पास है, ड्रॉ एन हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ योर फर्स्ट नेम ऑन बोथ द एंड्स ऑफ द लाइन। हाँ, आप इस पेपर पे एक सरल रेखा खींचिए और इसके शुरू और आखिरी हिस्से पे अपने नाम का, अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अल्फाबेट लिखें, अक्षर लिखें। एक सरल रेखा खींचिए, अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर इसके शुरू और आखिरी सिरे पर लिखिए, लाइन के। मैं फिर इंग्लिश में फिर रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुन लें। ड्रॉ एन हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ योर फर्स्ट नेम ऑन बोथ द एंड्स ऑफ द लाइन। हाँ, फर्स्ट नेम का पहला और आखिरी लेटर, फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर। फर्स्ट नेम तो समझते हो ना कि नहीं समझते? जैसे किसी का नाम है मोहन छाबड़ा, तो मोहन उसका फर्स्ट नेम है, छाबड़ा तो उसका लास्ट नेम हो गया ना, तो फिर उसका फर्स्ट एंड लास्ट लेटर मोहन का। लिख लिया सबने? हाँ जी, क्या कोई आएगा आके जरा इस बोर्ड पे ड्रॉ करे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपका शुभ नाम? देखो, इनका नाम है ऋषि, ठीक है? तो इन्होंने आर और आई लिखा है, ठीक है ना? तो आप सबने भी ऐसा लिखा है? किस किस ने लिखा है? बहुत अच्छा। कोई और भी क्रिएटिव तरीका है? लाइन थोड़ी सी मतलब हाँ, मैं समझ गई, आई गॉट योर पॉइंट। और कुछ? हाँ जी, भाई जी आ रहे हैं। हर एक आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, जिसने कोई अच्छे तरीके से लिखा। आप आ रहे हैं भाई जी? आप आइए। आपने कैसे लिखा है? आपने भी ऐसे लिखा है? ओके। कोई और क्रिएटिव तरीका नहीं है? लिखा जा सकता है या लिखना है? अच्छा, ये अब लिखेंगे। आपका नाम रूपेश है? आर एच, आर एच। किसने इस तरीके से लिखा? बहुत थोड़े लोगों ने। अच्छा, गिव ए बिग हैंड टू आवर ब्रदर। ताली बजाएं सभी। अब देखिए, इसमें थोड़ी सी हमारी इन्फॉर्मेशन स्लिप हो गई। हमने आपको ये बोला कि ड्रॉ एन हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ योर फर्स्ट नेम ऑन बोथ द एंड्स ऑफ द लाइन, है ना? दो तीन बार रिपीट किया था ना। इसका अर्थ ये है कि हम सब के अंदर हियरिंग है, हियरिंग है, पर लिसनिंग कहीं कम है, है ना? एक तो हमने बात सुन ली, और एक है उसकी, उसके भाव को समझने की कोशिश की कि उसका मतलब क्या है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस इन ऑर्डर टू बी ए गुड लिसनर, व्हाट एटीट्यूड इज रिक्वायर्ड? वो है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी, यू हैव टू बी अवेलेबल, ठीक है ना? जब तक आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली अवेलेबल नहीं रहेंगे, तब तक आप किसी बात को पूरी तरह से सुन पाएंगे? अभी आप सभी अवेलेबल हैं? अभी मैं आज एक्सरसाइज नहीं लाई हूं, बाय चांस मिस हो गया मेरे से। बहुत सुंदर एक्सरसाइज है हमारे पास अवेलेबिलिटी की। मतलब हमारा जो अटेंशन है, इट शुड बी टोटली फोकस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया। और अगर हम अवेलेबल होना चाहते हैं, लीडर को किसी भी समय, किसी भी स्थान पे, जहां उसकी जरूरत महसूस हुई, वहां वो अपने आप को अवेलेबल रख सके, इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी, इसका मतलब उसमें डेलीगेशन का गुण होना चाहिए। जब तक वो अपने काम को डेलीगेट नहीं कर लेता, मन से फ्री नहीं हो पाता, तब तक वो अपने को अवेलेबल नहीं कर पाएगा, ठीक है? वो वक्त पे पहुंच ही नहीं पाएगा। एक तो डेलीगेशन, दूसरा टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, और तीसरी बात यह है कि एक बहुत जो बेसिक क्वालिटी है कि आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। मैं अभी बाहर कहीं से आ रही हूं और कोई ऐसी घटना मुझे सुनने या देखने को मिली, अगर मैं उस घटना से प्रभावित हूं तो मैं आपके पास अवेलेबल हो पाऊंगी? बताइए। मैं आपको देख रही हूं, ऐसे ऐसे भी कर रही हूं, पर मेरा मन कहां है? वहीं पर है। तो आर्ट ऑफ डिटैचमेंट, मुझे कहां से डिटैच्ड होना है और कहां अपने को इन्वॉल्व करना है, ये भी तो आर्ट आना चाहिए। जब मैं आपके साथ आ गई, आई एम टोटली टोटली एंड टोटली इन्वॉल्व विद यू, और जब मैं यहां से बाहर चली जाऊंगी तो मुझे यहां से बिल्कुल डिटैच्ड होना होगा, तभी तो मैं अगली एक्टिविटी के बारे में सोच पाऊंगी। तो ये चीजें आपको मेडिटेशन से मिलेंगी, राइट? कोई भी घटना मेरे मानस पटल पर अपना प्रभाव न डाल सके, बस देखा डिटैच्ड, एक प्रैक्टिस हो जाए हमारी। तो ये है अवेलेबिलिटी। कई बार आप फिजिकली यहां हैं, फिजिकली यू आर हियर, मेंटली यू आर समवेयर एल्स, तो उसको अवेलेबल कहेंगे, बताइए? नहीं। अवेलेबल का मतलब है फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली आप यहां हैं। सो इन ऑर्डर टू बी अवेलेबल, व्हाट एटीट्यूड इज रिक्वायर्ड? कौन सा एटीट्यूड चाहिए, बताइए? उसके लिए चाहिए एक्सेप्टेंस। कौन सा चाहिए? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का गुण बहुत जरूरी है। हाउ वुड यू एक्सेप्ट? क्योंकि दो बातें आती हैं, जैसे आप सभी यहां बैठे हैं, आपके सामने किसी, आप में से ही किसी व्यक्ति को लेके उसे यहां कहा जाए कि आप ये सेशन आप लें इनका, तो आपकी उनके प्रति एक्सेप्टेंस होगी? आपके मन में ये रहेगा कि बहन जी को यही मिले थे शेयर करने के लिए, हमारे में से और कोई योग्य दिखाई नहीं दिया। तो जब तक आपके अंदर एक्सेप्टेंस जब तक नहीं है, आप उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि आप में एक्सेप्टेंस नहीं है उसके लिए। कई बार ऐसा भी होता है कि शर्म से आदमी नहीं बोल पाता, भई यहां स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर है, बहनें कहती हैं कि जो भी आए प्यार से चलो, बैठे भी हैं आप, लेकिन अंदर से आप उसे, कोई मेंटल ब्लॉक है जो वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, तो वो जो कुछ भी कहेगा ना, अगर वो कितनी अच्छी बात सुनाएगा ना, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जहां एक्सेप्टेंस है वही अंडरस्टैंडिंग है, और जहां अंडरस्टैंडिंग है वहां एक्सेप्टेंस है कि नहीं है? जहां आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी ना, तो वो कुछ भी सुनाएगा आप कहेंगे वेल डन वंस मोर, वेरी नाइस, ऐसे एनकरेज करेंगे। और जो जहां एक्सेप्टेंस नहीं होगी, तो वहां कहेंगे ठीक है भाई, सुनाना तो बहुत आसान है, हम जानते हैं ना ये लोग क्या हैं, ऐसे करके, क्योंकि अंदर से एक्सेप्टेंस नहीं है। तो दो शब्द आते हैं, एक है एक्सेप्टेंस और एक है सप्रेशन। ये भी हमें अपने को चेक करना है। हम किसी कलीग के साथ काम कर रहे हैं और पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति बिल्कुल नेगेटिव एटीट्यूड लेके चल रहा है मेरे साथ, और मैं काफी देर से उस बात को झेल रही हूं। एक दिन ऐसा आता है, मेरे मन में आता है कांट टेक इट एनी लॉन्गर, मैं अपने बॉस के पास जाऊंगी, या तो रहेंगे ये और या रहूंगी मैं, मैंने आज से डिसाइड कर लिया है। तो इतने लंबे समय तक जो मैं उनके साथ चल रही थी, वो एक्सेप्टेंस था या सप्रेशन था? सप्रेशन था। मैं अपनी भावनाओं को दबाती चली आ रही थी, लेकिन एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि मैंने सामने वाले की स्ट्रेंथ्स को भी समझ लिया है, वीकनेसेस को भी समझ लिया है, और मैं कोशिश करती हूं कि उसकी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में रिप्लेस करूं, और अगर मैं नहीं कर पाई तो एटलीस्ट मैं अपने लिए अपना कंफर्टेबल रास्ता ढूंढ के बिना किसी एक्सीडेंट के निकल जाऊं। मैंने अगर ये तरीका सीख लिया, इसको कहते एक्सेप्टेंस। ऐसा है हमारे अंदर, सामने वाला ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, मैं एक एग्जांपल हमेशा कोट करती हूँ कि जैसे डॉक्टर है, उसकी कोशिश होती है कि वो अपने पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट दे और ठीक कर ले, लेकिन अगर उसको ठीक नहीं कर पाया तो कम से कम उसका वायरस अपने पर लेके तो ना आए, राइट बात है ना। हम अपने कलीग्स को ठीक करें वो तो ठीक भावना है, पर नहीं ठीक पर कर पाए तो अपने पर तो उसका प्रभाव ना ले आए, इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस। इन ऑर्डर टू हैव एक्सेप्टेंस व्हाट एटीट्यूड इज रिक्वायर्ड बताइए, हाउ वुड यू एक्सेप्ट द थिंग्स? यू नीड फ्लेक्सिबिलिटी और एडाप्टेबिलिटी। जो फ्लेक्सिबिलिटी है इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू मूव फ्रॉम हियर टू देयर एंड एक्सेप्ट डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल पर्सनैलिटीज। अगर आप कहीं रिएक्ट करते हैं तो आप अपने रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं आगे बढ़ने के लिए, आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे, राइट? और जब आप लोगों तक ही नहीं पहुंच पाए तो उनके अंदर में क्या बीत रहा है उसे आप समझ नहीं पाएंगे, और जब आप नहीं समझ पाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि संस्था के सारे लोग मिलकर आपको ही आउट कर देंगे। तो जरूरी है कि नहीं फ्लेक्सिबिलिटी है? भाई पहले जमाना होता था बॉस अपने कमरे में बैठ के ऑर्डर पास करता था, आज लीडर का एक गुण होता है कि वो हर एक की कुर्सी पे जाके चेयर पे जाके हाथ शेक हैंड करता है, हैंडशेक करके हाउ आर यू, इट्स गुड, ओके, हर एक के दिलों तक वो पहुंचता है, क्योंकि काम तो सब टीम ने मिलके करना है ना। आपका एमडी भी तो आपको सुनता है कि नहीं सुनता, फीडबैक लेते हैं, हर एक को मौका देते हैं कि नहीं देते, तभी तो अच्छा काम चला पाते हैं वो, क्योंकि पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग है ना, किसी एक की बात तो नहीं है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, एडाप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन किस एक्सटेंट तक मुझे फ्लेक्सिबल या एडाप्टेबल होना है सो दैट नोबॉडी शुड टेक द डिसएडवांटेज ऑफ माय फ्लेक्सिबिलिटी और एडाप्टेबिलिटी। कई बार लोग कहते हैं भाई इसने मेरी ना फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा, नाजायज फायदा उठाया, तो उसके लिए हमें कौन सा एटीट्यूड चाहिए? उसके लिए चाहिए डिस्क्रिमिनेशन, राइट? डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि जब तक फ्लेक्सिबिलिटी आप में है तो बहुत सारे दो प्रकार के लोग इस दुनिया में हैं। कई लोग हैं जब आप उनको अप्रिशिएट करते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनको अप्रिशिएट करो, बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कई ऐसे हैं अप्रिशिएट करो तो ईगो आ जाता है, वो कहते हैं अब हमने बहुत कर लिया। तो हर एक का जो पल्स है ना वो अलग अलग है, और हर एक पल्स के अकॉर्डिंग उसका उसके साथ हमको व्यवहारिक पक्ष में आना भी अलग अलग है। हर एक की मेडिसिन एक तो नहीं है ना, बहुत सारी मेडिसिन है जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मैच ही नहीं करती, वो बेस्ट मेडिसिन भी हो सकती है। आपके बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कौन सी मेडिसिन काम करती है वो तो डॉक्टर को देखना पड़ेगा ना। इसके लिए चाहिए डिस्क्रिमिनेशन, तब तो आप हर एक के कॉन्टेक्ट में आके समझ पाएंगे कि ये चाहता क्या है, चाहे वो उसमें सीनियर्स हैं, सीनियर्स को जूनियर्स के बारे में जानना जरूरी है, और जूनियर को भी वेवलेंथ मैच करने के लिए सीनियर्स के साथ उनको समझना भी जरूरी है कि इनकी नीड क्या है, ये चाहते क्या है। अगर आपने इस पल्स को पकड़ लिया तो आप व्यवहारिक कला में नंबर वन जाएंगे। आप बिहेवियरल साइंटिस्ट के पास जाते हो, भगवान जैसा बिहेवियरल साइंटिस्ट तो दुनिया में कोई है ही नहीं। आप एक बार भगवान के महावाक्य तो सुनो, आंखें भर आती हैं कि कितना जबरदस्त, यानी इस दुनिया में हम विचरण कर रहे हैं, वो ऊपर बैठ के सारा देख रहा है किस तरीके से हम लोग गलत नहीं समझ पाने कारण ठीक व्यवहार नहीं करते, जिस कारण हम अपनी कमियों की वजह से सफर करते हैं, आपकी वजह से नहीं, अपनी कमजोरी की वजह से। तो इसके लिए क्या चाहिए? डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन में मैनेजमेंट में बहुत अच्छी बातें आती हैं कि जैसे कोई ने आपको इन्फॉर्मेशन दी, उसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, इट इज नॉट जस्ट टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन, भाई इतना ही काफी नहीं है कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको दे दी, बट कलेक्टिंग, सेलेक्टिंग, एनालाइजिंग, प्रायोरिटाइजिंग, सिंथेसाइजिंग, असेसिंग, इवेल्युएटिंग द थिंग्स, लीडर हैज टू गो थ्रू ऑल दिस प्रोसेस बिफोर कमिंग टू एनी कंक्लूजन। दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। ऐसे थोड़ी भाई आपको बस यहां ये घटना घटित हुई, आप यहां बैठे, आपको मिल गई और आपने उसे डिसीजन ले लिए। सो इन ऑर्डर टू हैव डिस्क्रिमिनेशन व्हाट एटीट्यूड इज रिक्वायर्ड और व्हाट गोज पैरेलल अलोंग विद डिस्क्रिमिनेशन सो दैट इट शुड बी फ्रूटफुली यूटिलाइज्ड। क्या चाहिए इसके साथ? डिसीजन मेकिंग। कई बार आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, बट उस इन्फॉर्मेशन का क्या फायदा अगर आपने टाइम पे डिसीजंस नहीं लिए? तो कहते हैं मुझे सिचुएशन का जायजा तो मैंने करवा लिया था, लेकिन मैंने अभी कुछ डिसीजन नहीं ले पाया, क्या फायदा हुआ? डिसीजंस तो लेना पड़ता है कि नहीं लेना पड़ता? वैसे तो डिसीजन ना लेना भी एक डिसीजन ही है, पोस्टपोन करना भी डिसीजन है, इटसेल्फ इज डिसीजन। लेकिन फिर भी अच्छा लीडर वो होता है जो डिसीजंस ले। किसी ने पूछा कि एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव से कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, तो उसने कहा द सीक्रेट ऑफ माय सक्सेस इज I always take prompt decision, quick decision, right decisions, on the spot decisions. उसने कहा बहुत अच्छी बात है, how you started taking right decisions? कहता of course by experience. कहता how you gained such good experience? तो कहता by taking wrong decisions. क्योंकि जब हम एक दो चार बार गलत डिसीजन लेंगे उससे हमें कुछ लेसन मिलेगा, तो नेक्स्ट टाइम ऑफ कोर्स उससे अच्छा डिसीजन हम लेंगे। गलती से भी तो आदमी सीखता है ना। लेकिन अगर हमेशा व्यक्ति डरता ही रहे डिसीजन लेने से, तो लाइफ भर वो तो किसी लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो डिसीजन लेना जरूरी है कि नहीं? कभी रिस्क टेकिंग भी तो बनना पड़ता है, लीडर्स रिस्क टेकिंग भी तो होते हैं। अगर वो ये सोचे ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये सोच के वो कभी डिसीजन ना ले, तो वो तो कभी महान बन ही नहीं सकते हैं। कुछ क्रांतिकारी तो बनना पड़ता है ना। बट मैं ये जरूर कहती हूं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ओवर कॉन्फिडेंट भी ठीक नहीं होते, ओवर कॉन्फिडेंट भी हमेशा फेल्योर रहते हैं। पर जो हम समझ पाते हैं कि हम कर पाएंगे, तो उसमें डिसीजन लेने में आपत्ति क्या है? अब आपने अच्छे डिसीजंस लिए, यू हैव मेड ऑल डिसीजंस, बट इन फ्यूचर इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, कोई भी चीज आपको लगता है गलत हुई है, पब्लिक की तरफ से ऑपोजिशन आया है, उसके बीच में भी आप स्टेबल रहें, तो कौन सा मतलब यू मस्ट नॉट पुट ब्लेम ऑन अदर्स, नहीं नहीं ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये इसकी वजह से हुआ है, उसके लिए कौन सा एटीट्यूड चाहिए बताइए? उसके लिए चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि डिसीजंस तो मैंने लिए हैं ना, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कौन झेलेगा? मैं ही झेलूंगी। ऐसे थोड़ी जब वो अच्छे मतलब लोग उसे अप्रिशिएट करें तो हम सामने आ जाएं कि हमारी वजह से हुआ है, और जब लोग थोड़ा सा ऑपोजिशन करना शुरू करे तो हम कहें नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं, इसने लिया है, ऐसे थोड़ी होता है। दोनों बार में आपको आगे आने की जरूरत है। इसलिए लीडर्स अगर कुछ अच्छा कहते हैं तो भी ठीक है, नहीं कहते तो पब्लिक के बीच में माफी भी मांगते हैं आके, भाई सॉरी हमने ऐसा कहा है, हमें नहीं कहना चाहिए था। नहीं कहेंगे तो पब्लिक उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, वन शुड बी फ्लेक्सिबल। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें अकाउंटेबिलिटी भी आता है ना? सो आई एम वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्टिविटीज और डिसीजंस, बट इट इज अगेन गोइंग टू फेल इफ समथिंग इज मिसिंग। आई एम वेरी मच कैपेबल टू कैरी आउट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन मैं ये कहती हूं कि अगर मैं एक चीज की कमी रखती हूं अपनी जिम्मेदारी निभाने में, तो इसका मतलब मैं एक अच्छा लीडर नहीं कहला सकती। वो क्या है? अब आपको यहां की मैनेजमेंट अच्छी लग रही है नहीं लग रही, तो यहां का देख के लोग हमारी हेड, जो संस्था की हेड्स हैं, चीफ हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। भाई यहां पर बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर है, कोई किसी को ऑर्डर पास करता हुआ दिखाई नहीं देता, ऑटोमेटिक काम चल रहा है, कोई मैनेज करता हुआ भी नजर नहीं आता है, जिसकी जो ड्यूटीज हैं वो एफिशिएंटली रन कर रहा है। ये सब समझते हैं लोग आफ्टर कितने 120 डिपार्टमेंट चल रहे हैं, और सारे चल रहे हैं। आप तो अभी ये छोटी सी ट्रेनिंग प्रोग्राम देख रहे हैं, हम नीचे जब थे हम स्वयं ही देख के आश्चर्य खा रहे थे कि कितनी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशंस थी, ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशंस। जैसे कि वहां पर आप लोग देखते हो ना, पार्लियामेंट लगती है, सिर्फ पार्लियामेंट की तरह है, और इतनी शांति से सभा चल रही है, सभागार में सभी बैठे हैं, हाईली इंटेलेक्चुअल बैठे हैं, इतनी सुंदर सुंदर उन्होंने काम किए हैं जो प्रेजेंट करते हैं, और सब लोग एक दूसरे को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, कोई ईर्ष्या और द्वेष का माहौल नहीं है, सब एक दूसरे से सीख रहे हैं कि देखो इतना अच्छा, हमें भी सीखना है। ये नहीं है कि कोई लेग पुलिंग है या एक दूसरे को गिराने की भावना है, ऐसा नहीं। तो इससे क्या समझ में आता है कि वो है टीम स्पिरिट। क्या भावना है? टीम स्पिरिट। What is the use of my taking responsibility if I am not able to create team spirit in my group? ठीक है ना? अब आप देखिए, ये सारे जितने भी attitudes हैं, team spirit के लिए listening चाहिए, listening के लिए availability चाहिए, available होंगे तभी listening होगी, available तभी रह पाएंगे जब आप में acceptance होगी। और एक्सेप्टेंस कैसे, कब आप एक्सेप्ट कर पाएंगे? जब आप फ्लेक्सिबल होंगे, अडॉप्टेबल होंगे। और जब आपके पास सारी अडॉप्टेबिलिटी कब आएगी? जब आप में डिस्क्रिमिनेशन होगा, और डिस्क्रिमिनेशन का बेनिफिट तब है जब आप कुछ डिसीजंस ले सकें, और उसके लिए आपको जिम्मेदारी का गुण होना जरूरी है, यू मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल। अब ये जितने भी हैं, There is proactivity in all these attitude. आप एक चक्र व्यू में आ गए, है ना? And there is interactivity also. Listening आप तभी कर पाएंगे, listening जब आपके पास है तब आप में discrimination आएगा। अगर आपने पूरी तरह बात को सुना नहीं है तो आपके पास complete information नहीं आ सकती, तो आप discriminate भी नहीं कर पाएंगे। फिर डिसीजन मेकिंग के लिए अवेलेबिलिटी जरूरी है। देखिए, डिसीजन मेकिंग अवेलेबिलिटी है ना? अगर आप अवेलेबल नहीं रहेंगे तो आप डिसीजंस को पोस्टपोन करते रहेंगे। फिर अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहते हैं तो आप में एक्सेप्टेंस चाहिए। टीम स्पिरिट बनाने के लिए अडाप्टेबिलिटी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, तभी टीम स्पिरिट बना पाएंगे। तो देर इज इंटरएक्टिविटी ऑल्सो, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब आप ये बताइए कि ये चार जो एटीट्यूड हैं, लिसनिंग, अवेलेबिलिटी, एक्सेप्टेंस, एडाप्टेबिलिटी, दिस इज समथिंग टू डू, टू बी एंड टू डू। ये डिस्क्रिमिनेशन, डिसीजन मेकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम स्पिरिट, it is connected with the being, it is connected with the doing. In order to be this, we have to do this. इन ऑर्डर टू डू दिस वी हैव टू बी दिस। ठीक है, ये चारों जो एटीट्यूड हैं ये बीइंग है, बीइंग से कनेक्टेड हैं। और डिस्क्रिमिनेशन, डिसीजन मेकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम स्पिरिट, ये डूइंग से कनेक्टेड है। अब हमें अपने आप को देखना है कि क्या ये आठ ही एटीट्यूड हमारे अंदर हैं, हम इन आठ एटीट्यूड्स को लेके कार्य कर रहे हैं। तो एक बात लास्ट में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अब अगर आप एक अच्छे लीडर हैं तो आप लिसनिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप जस्ट मैनेजर हैं, नॉट ए गुड लीडर, तो कहां से शुरू करेंगे? डिस्क्रिमिनेशन। और बताइए, डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम आपके बॉस हैं, डिसीजन सारे हमको लेने हैं, बिकॉज आई एम योर बॉस, बाकी काम तो आपको करने हैं, सारी इन्फॉर्मेशन भी ला करके दें, यू मस्ट बी फ्लेक्सिबल, यू मस्ट हैव एक्सेप्टेंस, यू मस्ट बी अवेलेबल, आप बात को ध्यान से सुने, आप आपस में मिलजुल के क्यों नहीं रहते, सारे काम किसको करने हैं? आपको करने हैं। और हम क्या करेंगे? डिसीजंस लेंगे। तो मैनेजर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा और लीडर क्लॉकवाइज जाएगा। तो अभी आप देखिए आप किस कैटेगरी में अपने आप को कहेंगे, मैनेजर या लीडर? कहां से शुरू करते हैं, लिसनिंग से या डिसीजन मेकिंग से? हैं, जो कहते हैं हम लिसनिंग से स्टार्ट करते हैं वो जरा हाथ उठाएंगे। बहुत अच्छा, मेजॉरिटी। और जो बोलते हैं कि हम डिसीजन मेकिंग से स्टार्ट करते हैं वो, नोबॉडी इज देयर। और कई कहते हैं हम दोनों ही हैं, ऑफिस में तो हम क्लॉकवाइज जाते हैं, घर में हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, अपने अपने स्पाउस के आगे वी आर अ बॉस हैं। लेकिन अगर हम हर जगह लिसनिंग से काम लेंगे तो हम बहुत अच्छा मैनेजमेंट चला सकते हैं। अब मैं आपको चंद शब्दों में ये बताना चाहूंगी, क्योंकि मैनेजमेंट गुरुस तो आपके पास बहुत आते होंगे जो मैनेजमेंट के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसका स्पेशलाइजेशन अध्यात्म में है, तो वो आपको आध्यात्मिक इनपुट दिए बिना ये सेशन नहीं करा पाएंगी। तो जितने एटीट्यूड आप देख रहे हैं इसके पीछे स्पिरिचुअल पावर्स की जरूरत है। तो वो जो एट पावर्स हैं, जैसे लिसनिंग में चाहिए पावर टू विदड्रॉ, पावर टू विदड्रॉ करने की शक्ति, और अवेलेबिलिटी पावर टू पैकअप, एक्सेप्टेंस पावर टू टॉलरेंस, पावर टू टॉलरेट। यानी हिंदी में बताती हूं, संकीर्ण शक्ति पहला, फिर समाने की शक्ति, पावर टू पैकअप, नहीं समेटने की शक्ति, पैकअप मतलब समेटने की शक्ति, फिर एक्सेप्टेंस सहन शक्ति, फिर एडाप्टेबिलिटी। एडाप्टेबिलिटी का मतलब है समाने की शक्ति, डिस्क्रिमिनेशन परखने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग निर्णय शक्ति, रिस्पॉन्सिबिलिटी सामना करने की शक्ति, टीम स्पिरिट सहयोग शक्ति। ये आठों ही शक्तियां राजयोग की देन है, ये सारी शक्तियां, ठीक है, राजयोग की देन है। और जो मैंने आपको बताया ना संकीर्ण, संकीर्ण शक्ति में हम हमेशा कछुए का मिसाल देते हैं, वो जब कर्म करता है तो कर्म इंद्रियों को विथड्रॉ कर लेता है, संकीर्ण कर लेता है, फिर कर्म के समय बाहर आता है, कर्म करने के बाद विथड्रॉ कर लेता है। तो आप भी जब कर्म की जरूरत है तो बाहर आ जाओ, फिर डिटैच्ड हो जाओ, विथड्रॉ कर लो, आपकी लिसनिंग बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं जाएगी ना। ऐसे ही अवेलेबिलिटी समेटना। आजकल जितने भी मार्केटिंग में तो आप सभी काम कर रहे हैं, जिनको हमेशा ट्रैवलिंग में रहना होता है तो वो अपना एक किट बैग तैयार कर लेते हैं, एक किट तैयार करते हैं, ट्रैवलिंग किट है। अभी आदेश हुआ चल पड़े, अगर आप लाइट ट्रैवल करेंगे तो सुखी रहेंगे, और अगर आपके पास ज्यादा सामान होगा तो वक्त पे आप अपने आप को पहुंचा नहीं पाएंगे। तो ये हम सभी यात्री हैं, कभी भी अचानक आदेश आ सकता है जाने का, और हम सब तरफ से अपने आप को समेट लें। कौन सा इंपॉर्टेंट किट में कौन सी चीजें भरनी है आपको, आपकी ट्रेवल किट में कौन सी चीजें आनी चाहिए? दिव्य संस्कार, दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां, श्रेष्ठ कर्म, बाकी सब यही रहेगा। ये आदत पड़ जाएगी तो आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आपका अटेंशन बहुत ज्यादा स्कैटर्ड थॉट्स नहीं होंगे लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड एंड फोकस्ड अटेंशन रहेगा। और फिर सहन शक्ति, एक्सेप्टेंस, ठीक है। सहन शक्ति का मतलब हर व्यक्ति उसकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को समझते हुए उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना। एडाप्टेबिलिटी का मतलब एडजस्ट करना, पावर टू एडजस्ट। जैसे सागर सबको समा लेता है, स्वच्छ हो जाता है, हम हरेक की बात को समा लें पर अपने मन पर उसका इम्प्रेशन बना के ना रखें, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने मुझे कोई बात कही मैं तुरंत दूसरे को सुना दूं फिर वो उसको सुना दे, ऐसा नहीं। उसको समाना और फिर उसका इम्प्रेशन अपने पर बना के नहीं रखना, व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं लाना। डिस्क्रिमिनेशन, परखने की शक्ति, जैसे जौहरी हीरे को परखता है तो आत्मरूपी हीरे की परख उस जौहरी को है जिसका उस परमात्मा से कनेक्शन है। डिसीजन मेकिंग का मतलब टाइम पे सही डिसीजंस लेना, जैसे तराजू है उसका बीच का कांटा बिल्कुल सीधा है तो तराजू ठीक तोलता है, हमारा बुद्धि रूपी कांटा ईश्वर की याद में एकाग्र होगा तो बुद्धि रूपी तराजू ठीक तोलेगा, व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। आपको इंट्यूशंस आएंगे कि आप मुझे व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, पावर टू फेस, यानी कितनी भी परिस्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी कुछ भी, पर वो साहस हो उसे फेस करने का, उसके लिए आपको अंदर से शक्तिशाली होना जरूरी है, और इनर पावर तब बढ़ेगी जब आपका सुप्रीम के साथ कनेक्शन है। टीम स्पिरिट का मतलब सहयोग शक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसलिए मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी। कहते दुनिया में तीन तरह के लोग हैं, दानव, मानव और देव। दानव जो हैं उनकी प्रवृत्ति क्या है, 1300 मेरा, मेरा भी मेरा, 1300 मेरा, मेरा भी मेरा। और जो मानव हैं वो कहते हैं 1313, मेरा सो मेरा। और जो देव हैं वो कहते हैं न कुछ मेरा न कुछ तेरा, सब उसी का है, हम भी उसी के हैं। न केवल वो अपना तन मन धन अपनी रिसोर्सेस सब कुछ उस पर समर्पित करते हैं बल्कि दूसरों को भी संपूर्ण समर्पण की दूसरे के अंदर भी भावना पैदा करते हैं। तो इस प्रकार की आत्माएं ही देव आत्माएं हैं और वही वास्तव में सहयोग दे सकती हैं। तो अब आप ये बताइए कि तीनों कैटेगरी में से आप अपने को कहां ठहराएंगे, हैं? मानव, बहुत अच्छा है, 1313, मेरा सो मेरा, ठीक है। अभी बनना क्या है, बनना है जो कहते बनना है, जरा कैन यू रेज योर हैंड्स प्लीज, ऊंचा हाथ उठाओ, टेढ़ा हाथ नहीं, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, अपने लिए ताली बजाओ, बहुत अच्छा है ना ये। और अगर आप देव प्रवृत्ति में जाना चाहते हैं तो आप एक मॉडल को अपने सामने रखें, वो है गणेश। गणेश देखो जो उसके बड़े कान है ना, लिसनिंग एबिलिटी है ना, ये आठों एटीट्यूड उसके अंदर है, लिसनिंग एबिलिटी। और जो ट्रंक है उसका वो सूंड, डिसीजन मेकिंग में बहुत जरूरी है कि व्हाट टू टेक व्हाट नॉट टू टेक, क्या पिक करना है क्या नहीं करना है, वो हर चीज को सोच सोच के चलता है। और जो छोटी छोटी आंखें हैं, डिस्क्रिमिनेशन, इतनी दूरदर्शिता है उसमें, दूर की सोचने वाला नहीं, परखने की शक्ति है। ऐसे बिग स्टोमिक, पावर टू एडजस्ट, है ना, कहते हैं इसके पेट में कोई बात ही नहीं ठहरती है, पर इसके पेट में हर बात समा जाती है, राइट। और फिर सबसे बड़ी, हाथी के लिए बोलते हैं वो मस्त चाल चलता है, और जो शहरी डॉग्स है ना वो बहुत आवाज करते हैं, जैसे वो नगर के बड़े हितैषी हों और गजराज को निकालने की कोशिश में हो, लेकिन गजराज भी अपनी मस्ती में जा रहे हैं क्योंकि वो पूरे कॉन्फिडेंट हैं, उन्हें अपनी शक्ति का एहसास है, और वो ये भी जानते हैं कि ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, अगर हमारे पांव के नीचे आ गए तो पीढ़ी सहित समाप्त हो जाएंगे, इसलिए वो अपनी मस्ती से चले जा रहे हैं। तो ऐसे लोग कभी किसी व्यक्तियों के कहने से इन्फ्लुएंस में नहीं आते, दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंस, दे आर वेरी मच बोल्ड, करेजियस, स्ट्रांग। ऐसे लोग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, अगर वो करेजियस नहीं होंगे तो कैसे लेंगे। कुछ एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा ना। और एक बड़ी चीज क्या है, उनका जो वाहन है वो क्या होता है, चूहा, पावर टू पैकअप। क्योंकि चूहा जो है वो कहता है जब वो काटता है तो फूंक मारता है, इट बाइट्स व्हेन इट ब्लोज, इट ब्लोज व्हेन इट बाइट्स। कैसे, तब तक फूंक मारता रहेगा जब तक काटने का प्रोसेस रहता है, और जब वो काट के दूर चला जाएगा तब सीवियर पेन होगा। तो हमारी जो कमजोरियां अंदर ही अंदर हमें काट रही हैं, जिसका हमें भी एहसास नहीं है, और कोई अगर समझदार हमें समझाना चाहता है तो हम कुछ वेस्ट इंटरेस्ट के लोग मिलके आपस में बातें करेंगे, उसका उपहास उड़ाएंगे, हम उन्हें अपने से दूर रखना चाहेंगे, हम कभी अंतर्मुखी होकर सोचेंगे नहीं कि इनने कितनी अच्छी बात हमसे कही है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इन बातों पर चिंतन करके बारीकी से अपनी कमजोरियों को समझ के उसको जड़ से उखाड़ने का प्रयास करते हैं, इन सबको समेट के अच्छी चीजों का संग्रह करते हैं। तो इसलिए उसका समेटने की शक्ति का गायन है, वाहन चूहा दिखाते हैं। और एक सबसे बड़ी उनका जो भोग है गणेश जी का, वो क्या होता है, और लड्डू कैसे बनता है, मोतीचूर कैसे बनता है, एक एक उंगली से बनता है, सिनर्जी, है ना। जब तक ये सारे नहीं मिलेंगे, टीम स्पिरिट, तब कहते हैं हाथी हमेशा झुंड में चलता है, टीम स्पिरिट। तो ये सारे जो गुण हैं, सारे एटीट्यूड्स, ये गणेश जी में हैं, इसलिए वो क्या है, आध्यात्मिक जगत का गुरु है। तब कहते हैं कि पहले आद गणेश मनाओ जब भी कोई काम करो। तो अब आप भी कॉरपोरेट वर्ल्ड में लीडर बनना चाहते हैं तो आपको भी गणेश को ही सामने रखना है, तब हम अपने अंदर आठ एटीट्यूड्स को ले पाएंगे। और जब आप उनके भी पिता सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव को याद करेंगे तो ये आठों ही गुण आपके अंदर योग की शक्ति से आएंगे। तो इन शुभकामनाओं के साथ मैं अपना सेशन कंप्लीट करती हूँ। ओम शांति।